अध्याय 5 वर्ष 2 संख्या में 46 46 तो 41 तक हुआ था और उसके बाद किताब पढ़ी नहीं है तो मैं बाद में उसके अनुवाद पढ़ूंगा। ये वाला श्लोक आप दोहरा सकते हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। वर्तमानो अपि दुरे वै आशीर्वाद देने में कुछ इस विषय पर चर्चा कर सकूं। जब कल इस श्लोक को पढ़ रहा था मुझे लगा पता नहीं क्या करना चाहिए, कुछ तात्पर्य इस तरह का है और संधि ऐसा ही चल रहा है कि अब प्रभुपाद जी ने पिछले 3-4-5 श्लोकों से इसमें तात्पर्य दिया नहीं है, अभी इसमें बहुत छोटा सा तात्पर्य है 3-4 महीनों में। मुझे लगा कि डिवोटी के जो गुण है उसके ऊपर कुछ चर्चा कर सकते हैं, तो मुझे जो है वो प्रहलाद महाराज का जो सबसे इसमें जो गुण इम्पोर्टेंट लगा वो था उनका फियरलेसनेस, निर्भीकता। कि आप सबने पढ़ा है यहाँ पीछे कि अभी सुना है कि कितने ज्यादा उनके साथ क्या क्या किया गया, पहाड़ से फेंका गया, हाथी के पैर के नीचे कुचले गए, विष दिया गया, सांपों के उसमें डाला गया, और फिर भी जो है वो बिल्कुल उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं थी। छोटे से 5 साल का बालक जो है वो उसकी कितनी, 5 साल का बालक तो वैसे ही जाता है, जैसे कल प्रभु जी क्लास में बता रहे थे कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके फादर या कुछ फैमिली मेंबर के अलावा कोई उसको और उठा ले तो तभी वो डरता है। फिर प्रहलाद महाराज की स्थिति देखिए कि 5 साल के बालक उनके साथ क्या क्या हुआ है, और भी मारने के लिए कौन तैयार है, वो खुद उनके पिता, कितनी भयानक स्थिति है, किसी के घर में उसके पिता ही उसको मारने के लिए जो है पूरी तरह से तैयार है, वो भी कोई सामान्य पिता नहीं थे। हम ऐसे हरे कृष्ण महाबंध बोलते हैं एक बार तो हाथ दूसरी बार को लाया और नीचे हो, तीसरी बार को लाया क्या उठा रहे, 3 बार हाथ की हाथ स्थिति बहुत खराब हो जाती है, और हिरणा कश्यपु जो है 1000 साल तक देवताओं के हाथ ऐसे खड़े करके एक पैर पर तपस्या कर रही थी, तो कैसी शक्ति होगी आप सोच लीजिए उस व्यक्ति के अंदर, देवताओं के 1000 साल। तो पर वो पिता थे उनके दुश्मन एक 5 साल के बच्चे का, और जिसके पास सारी सामग्री थी भोगने की, ये तीनों जगत में जो है वो सब कुछ उनके ऑर्डर से होता था, इतने शक्तिशाली व्यक्ति थे हिरण्यकश्यपु, इवन हवा भी उनके ऑर्डर से चलता था, क्या इंद्र के सबके जो है वो पावर खत्म हो गए थे। तो ऐसे व्यक्ति जो है एक छोटे से बच्चा उनके घर में ही 5 साल का बच्चा उनकी बात नहीं मान रहा तो कष्ट हो गया, उसके लिए सारा सुख सारा वैभव सब जो है फीका पड़ गया, ये कैसे पॉसिबल है, ये कोई छोटा सा बालक 5 साल का बच्चा जो है मेरी बात नहीं मान रहा, वो भी मेरे घर में वो भी मेरा बेटा, कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा आप सोचिए हिरण्य कश्यपु के लिए। हर व्यक्ति उनके डर से जो है इवन सूर्य चांद इंद्र सब उनके डर से जो है काम कर रहे थे, और ये छोटा सा बालक उन्हीं के घर में जो है उनकी बात नहीं मानता, तो उनका जितना भी भोगने की जो सामग्री थी पूरे संसार को वो सारी सामग्री फीकी पड़ गई, किसके सामने, एक छोटे से बालक के न बात ना मानने के सामने, कि उन्होंने बात आज्ञा मानी अस्वीकार कर अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी। ये जो निर्भीकता की प्रहलाद महाराज में, ये अपने आप में बहुत ही एक ऐसा गुण है जो सबको आकर्षित करता है। तो अब ये ऐसी निर्भीकता उनके अंदर आई कहां से, छोटे आप, हालांकि ये जो निर्भीकता है हम दूसरे भागवतम के दूसरे कैरेक्टर्स में भी देखते हैं, ध्रुव महाराज छोटे से 5 साल के बालक थे पर तपस्या करने चले गए, 5 साल का बच्चा को जंगल में जाता तपस्या करने, तो जंगल में चले गए, आगे नारद जी ने मना नहीं किया मत जाओ, तभी चले गए और ऐसी तपस्या करी कि पूरा तीनों लोग जो है हिलने लग गया। तो हम इस तरह और हम आगे भी देखते हैं, जैसे इसमें भागवतम में ही एक और कैरेक्टर इसमें उनके सामने निकट परिस्थिति उत्पन्न होती है महाराज चित्रकेतु, वो उनके अंदर कोई फियर नहीं, माता पार्वती ने साफ दे दिया राक्षस हो जाओ, और उन्होंने जो है उनके एक उन्नत वैष्णव होने के कारण उनकी शक्ति थी कि माता पार्वती की साफ को यूटिलाइज कर सकते थे या रोक सकते थे, तो उन्हें भी साफ दे सकते थे, और उन्होंने ऐसा नहीं किया, बड़े आराम जो है उसमें एक्सेप्ट कर लिया, अपने हाथ जोड़ करके जो है उस साफ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, निर्भीक बने रहे बिल्कुल। इस इस दौरान जो है इस तरह के कैरेक्टर्स जो है भागवतम में, तो मैं यही सोच रहा था प्रहलाद महाराज में जो है इस तरह के गुण कैसे हैं, किस तरह से इस गुण को उन्होंने विकसित किया, किस तरह से उनके अंदर ये गुण आए, तो इस पर चर्चा कर रहे हैं। पहले एक वर्ड है इसमें सुना से, सुना से मतलब आपने सुना है कुत्ते का पूंछ। शास्त्रों में दूसरे जगह इसको इसमें यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है कि टेढ़ेपन के लिए, ये जो कुत्ते का पूंछ और टेढ़ा के टेढ़ा ही रहेगा वो सीधा नहीं होगा, बट शास्त्रों में इसका प्रयोग किसी और नवी जगह पर जो है दूसरे चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, व्यर्थता के लिए, कि व्यर्थ है। जैसे कुत्ते का पूंछ है बिल्कुल व्यर्थ है, सुना पोक्ष व्यर्थम जीवनम विद्या बिना, कि अपने आध्यात्मिक विद्या का किसी को आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान नहीं है या आध्यात्मिक विद्या के बारे विषय में नहीं जानता, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का जीवन कुत्ते के पूंछ के समान है। ये एक अलग जगह पर इसकी चर्चा है। और यहाँ क्या है कि कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा है, परंतु आप में से ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से पहली बार आए हैं, तो मैं थोड़ा सा ये प्रसंग आपको बता दूं कि ये जो प्रसंग है वो नारद मुनि जो है युधिष्ठिर महाराज को एक कथा सुना रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं कि उसके एक जो उनके असुर कुल में एक बालक पैदा हुआ प्रहलाद, और उसके पिता जो है उसके दुश्मन बन गए, और इस तरह से उन्होंने उनको मारने का प्रयास किया। तो ये उसी प्रसंग का एक श्लोक है और ये आगे। तो जबकि ये भौतिक जगह पूरा जो है वो भय से व्याप्त है, हर जगह भय है, हर इवन हम जो मोस्टली जो हम लोग डिवोशनल सर्विस कर रहे होते हैं डिवोटीज, उनके अंदर भी भय व्याप्त होता है, उनके अंदर भी डर होता है। तो ऐसे भौतिक जगत में जहाँ हर व्यक्ति डरा हुआ है, हर जगह भय व्याप्त है, प्रहलाद इतनी निर्भीक क्यों थे, उनके अंदर इतनी निर्भीकता क्यों थी? तो इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त है उसके अंदर जो है वो सारे गुण जो है अपने आप प्रकट होते हैं, या जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर जो है वो सारे दिव्य गुण जो है प्रकट होता है। जब दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं भगवान 16वें अध्याय के पहले श्लोक में, क्या पहला ही वर्ग है अभयम भय रहित, अर्थात भक्त का जो है सबसे पहला गुण क्या है कि वो निर्भीक होगा, उसमें जो है वो जो गुण विकसित होंगे तो निर्भीकता सबसे पहले, अर्थात उसके अंदर से जो है डर खत्म हो जाएगा। तो ये जो डर है हम मेरे में दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम डिवोशनल सर्विस करते हैं तभी जो है डर बना रहता है, पर प्रहलाद महाराज भी ये नहीं था, बिल्कुल निर्भीक थे। तो हम देखते हैं कि ये गुण जो उनके अंदर में था क्यों, क्योंकि वो फुल्ली सरेंडर थे, पूरी तरह से भगवान को समर्पित थे और सेल्फ रियलाइज भी थे, इतने से छोटा सा बालक। तभी तो महाराज इन्होंने भक्ति भागवत स्वामी महाराज बता रहे थे प्योरिटी ऑफ इनोसेंस, शिशिर कर्म भगवान और उसको इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि कोई उसे बचा रहा है। तो ये महाराज बताते हैं प्योरिटी ऑफ इनोसेंस, भगवान से उन्हें बचा रहे थे, और खुद ही अपने ही पिता जो है उनको तरह तरह से मारने का प्रयास कर रहे थे। तो प्रहलाद महाराज जो है दोनों बातों से हम दिखते उनको इस बात की चिंता नहीं थी, उनके पिता को मारना चाहते, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हे पिता से आप मुझे क्यों मारना चाहते, और कभी भी भगवान से प्रार्थना नहीं की मुझे आप बचा लीजिए। अब भक्त की स्थिति देखिए, उन्होंने भगवान से कभी प्रार्थना नहीं की आप मुझे बचा लीजिए। तो ये जो है ये इनोसेंसी जो है उनके अंदर है, तो भक्ति के लिए ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है ये इनोसेंट होना, या इस तरह से जो दो गुला पानी या कपट से रहित होना। तो ये जो गुण है व्यक्ति को ये, और प्रहलाद महाराज में रीति का क्यों स्वाभाविक थी, ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने इसको उन्होंने आर्टिफिशियल डरते नहीं थे या कुछ ऐसा पोज बना लेते थे कि मैं डरता नहीं हूं, ये स्वाभाविक था उनके अंदर यह निर्भीकता। तो इस तरह की निर्भीकता भक्ति करने से जो है वो प्रकट होती है। अगर कोई भगवान विष्णु को भक्ति करने का प्रयास करता है और करता है तो निश्चित रूप से जो उसके अंदर सबसे पहला लक्षण प्रकट होगा ये वाला होगा अभयम। फिर इस भौतिक जगत की जो समस्त डुअलिटीज हैं, द्वंद है, सुख दुख लाभ हानि यश अपयश जीवन मरण, प्रभु जो प्रहलाद थे सबसे ऊपर थे कि जो भौतिक जगत का जो व्यक्ति है, जो भौतिक जो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी और माया के अंदर में है उसको एक डुअलिटी प्रभावित करती है। तो प्रहलाद की जो है वो इनके अंदर नहीं थे, भौतिक प्रकृति के अंदर नहीं थे, इसीलिए उनको ये डुअलिटी बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रही थी। तो डर होना या अपनी सुरक्षा की मांग करना ये भी जो है इस भौतिक जगत की डुअलिटीज में आते हैं। तो तभी जो है ये प्रहलाद महाराज न अपने रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे और न इस बात से वो जागरूक थे उन्हें कोई मारने का प्रयास कर रहा। तो ये जो गुण है स्वाभाविक रूप से एक भक्त में आता है जो दैवी प्रकृति के अधीन होता है, अर्थात जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन होकर जिसकी भक्ति होती है या भक्त कर रहा होता है तो उसके अंदर ये गुण जो है वो स्वाभाविक रूप से आता है। फिर डिवोशनल सर्विस करके जो है कोई व्यक्ति इस ड्यूरिटी से ऊपर आ सकता है, क्योंकि जो फियर है, जो डर है, वो उसका जन्म अज्ञानता से होता है। और जो है प्रहलाद थे वो निश्चित रूप से अज्ञान नहीं थे, अज्ञानता में नहीं थे, इसीलिए उनके अंदर ये डर नहीं था। तो इसे हम देखते हैं कि प्रहलाद के अंदर जो है ये सारे गुण कैसे प्रकट हुए और खास करके निर्भीकता कैसे प्रकट हुई, भगवान की भक्ति करने के कारण या भगवान का शरण लेने के कारण। और ये शरण ऐसा नहीं कि उन्होंने जो है बाद में भक्ति करी थी जन्म लेने के बाद, ये उनके अंदर ये सारी चीजें हैं जो है उनके गुरु नारद जी की कृपा से, उन गर्भ में जब वो माता के गर्भ में थे तभी उन्होंने सब कुछ सुन लिया था, और उसके बाद जब प्रकट हुए तो उनके लक्षण बिल्कुल अलग थे। तो ये जो एक और जो है निर्भीकता बताते हैं कि जो भय का जन्म होता है वो हमारी भौतिक इच्छा के कारण, अगर हमारे संसार को भोगने की बहुत इच्छा है या हमारे अंदर बहुत ज्यादा भौतिक कामनाएं हैं, भौतिक इच्छा है, तो ये फिर हमें डर को जन्म देता है। और तो प्रहलाद महाराज के अंदर न इग्नोरेंस में थे न उनके अंदर कोई भौतिक इच्छा थी, तो इसी वजह से वो बहुत ज्यादा निर्भीक थे। और जो है इतने बड़े व्यक्ति के सामने जो है वो बिल्कुल निर्भयता से रहते थे और उसी फैमिली उसी घर में रहते थे। तो इसलिए जो गुण है एक्चुअली में ये जो गुण है भगवान में होता है ये निर्भीकता का गुण, तो ये जो भगवान की शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करता है वो सेम गुण जो है वो भक्त में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि ये आत्मा का गुण है अर्थात भगवान का गुण है, तो ये जो है उस आत्मा उस जीवात्मा में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरा पहलू इसका हिरण्यकश्यप जो इतने डरे हुए थे, प्रहलाद तो निर्भीक थे इन वजह से, इन कारणों की वजह से जो हिरण्यकश्यप क्यों भयभीत थे, जबकि वो तो तीनों लोगों के एक तरह से स्वामी थे, फिर उनमें इतना भय क्यों था। तो बताते हैं कि जो अटैच पर्सन है वो हमेशा ट्रबल में रहता है, जिस व्यक्ति जो व्यक्ति बहुत जो है वो उसके अंदर अटैचमेंट होती है वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को मुश्किल में पाता है, और जिस व्यक्ति में जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, धन के प्रति, वो व्यक्ति इतना ज्यादा डरा हुआ होता है और उस व्यक्ति का जो है वो स्वाभाविक जीवन नहीं जीता। तो ये अटैच पर्सन की निशानी है हिरण्यकश्यप के अंदर कि अपने को, क्योंकि एक सक्सेसफुल व्यक्ति जो है वो ये समझता है कि सब कुछ जो है मेरे हिसाब से होना चाहिए संसार में, सफलता के मतलब यही समझते हैं कि हर चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली मैं जैसा चाहता हूँ वैसे होना चाहिए। और हिरण्याकश्यप को भी ऐसे ही सोच रहे थे कि हर सब कुछ जो है मेरे हिसाब से होना चाहिए, और हो भी रहा था। पर ये एक बात को छोड़ दिए कि प्रहलाद उनकी बात नहीं मानते। एक कहावत है कि यू कैन नॉट हैव योर वे ऑल द टाइम, कि हर समय जो है आप अपने हिसाब से आप चीजें नहीं कर सकते हो। और ये हिरण्याकश्यप ये करने का प्रयास कर रहे थे, तो क्या है कि वो फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। क्योंकि अब देखिए, अगर इस बात को ग्रहण कर दें तो कितना सामग्री थी भोग करने, क्योंकि आराम से जो है इस संसार में भोग कर सकता था, पर सारी भोगों की चीजें उनके सामने नहीं थी। केवल इस छोटे से बात के लिए, क्योंकि एक छोटा सा छोटा बेटा, सबसे छोटा बेटा, उनकी बात नहीं मानता। फिर सबसे दूसरी बात क्या थी कि वो ना इग्नोरेंस होता प्रहलाद ने, और हिरण्याकश्यप भी मानता नहीं था कि वो प्रहलाद इग्नोरेंस के बाहर थे और हिरण्याकश्यप इग्नोरेंस में थे। इग्नोरेंस में क्या मतलब है कि भगवान के बारे में, भगवान की शक्ति के बारे में, या आशा कि मैं जो है मैं खुद भगवान बन सकता हूँ, मैं विष्णु को पराजित कर सकता हूँ, इस तरह का जो है उनके विचार थे। तो जो व्यक्ति इग्नोरेंस में होगा उस व्यक्ति को डर लगेगा, उस व्यक्ति के अंदर जो है वो क्लियर होगा ही होगा। और इसमें जो फियर है वो मटेरियल एनर्जी के साथ, जो भौतिक प्रकृति है उसके साथ सहन करके जो है फियर ज्यादा होता है। अगर हम भौतिक प्रकृति का ज्यादा सहन करते हैं, अर्थात हम भौतिक वातावरण में रहते हैं, भौतिक लोगों का सहन करते हैं, हमारी थिंकिंग जो है वो भौतिक है, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो है वो डर बहुत ज्यादा होता है। हम हर चीज से फिर डरते हैं, इवन डिवोशनल सर्विस में आने के बावजूद भी हमें बहुत डर लगता है। अब इसमें ये है कि मेंटल उसमें जो हिरण्याकश्यप का जो है वो प्योरली भौतिक चेतना थी, और प्रहलाद महाराज की स्पिरिचुअल चेतना थी। तो इसलिए प्रहलाद डरते नहीं थे, और जो हिरण्याकश्यप जो थे वो डरते थे। इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद जो है उनको डर लगता था। और आप श्लोक का आपने अनुवाद सुनाया, उसमें कह रहे कि आ कैसा व्यक्ति है ये कि कुत्ते की पूंछ की तरह सीधा नहीं होगा, और तो सब कुछ कर दिया, उनके खिलाफ जो भी कर सकते थे वो सब कुछ करने का प्रयास किया, बट वो जो है उनको मार नहीं पाए। तो इस बात से उनके अंदर और जो है वो भय व्याप्त हो गया, एक छोटे से 5 साल के बच्चे को मैं मार नहीं पाया अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद। तो ये भी उनके अंदर जो है डर का कारण था। फिर जो व्यक्ति मेटेरियल चेतना में होता है और जो व्यक्ति स्पिरिचुअल चेतना में होता है, दोनों की ड्यूटी और दोनों के धर्म अलग अलग होते हैं। हिरण्याकश्यप का कर्तव्य बिल्कुल अलग था, और प्रहलाद महाराज का कर्तव्य बिल्कुल अलग था, या धर्म आप समझ लीजिए कर्तव्य इस धर्म उनका अलग था, इनका अलग था। क्योंकि एक व्यक्ति मेटेरियल कॉन्शियस में और दूसरा व्यक्ति स्पिरिचुअल कॉन्शियस में। तो मेटेरियल कॉन्शियस में रहने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी पावरफुल क्यों होना हो, भौतिक रूप से वो व्यक्ति के अंदर डर होता ही है। तो आप सब जो श्रीवास और श्रीवन फॉर्म हाउस में जाना चाहते हैं, ये बस जो है 5 मिनट में चली जाएगी, वो तो कृपया आप लोग यहां से जा सकते हैं। तो हिरण्याकश्यप में जो है बहुत अधिक संसार को भोगने की इच्छा व्याप्त की, इसीलिए जो है उनके अंदर डर ज्यादा। फिर इस शास्त्र में बताया गया है ये डर जो है दो तरह का होता है, एक मटेरियल एक स्पिरिचुअल। तो अब मटेरियल डर के बारे में आपने सुन लिया, स्पिरिचुअल डर मटेरियल जो डर है उसका बेस इग्नोरेंस होता है, दैट इज बेस्ड ऑन द इग्नोरेंस। जो स्पिरिचुअल डर है या स्पिरिचुअल फियर है उसका बेस होता है प्योर इमोशंस, वो प्योर इमोशंस के ऊपर आधारित होता है। जैसे जैसे वासुदेव और देवकी को भी डर होता था, जैसे नंद और यशोदा माता को भी डर होता था कृष्ण के लिए, या वासुदेव और देवकी को अभी डर होता था कि कंस जो है कृष्ण का कुछ बिगाड़ ना दे, कंस जो है कृष्ण को मार ना दे, ये डर हमेशा रहता था। तो ये जो है डर वो प्योर इमोशंस के ऊपर आधारित है। तो इस तरह से उन्होंने जो दो डिवीजन बनाए गए हैं इसको डर के, ये डर जो है दो तरह का होता है। फिर डर की दो बेटियां भी हैं, जरा और चिंता। चारा का दो अर्थ है संस्कृत डिक्शनरी के हिसाब से, एक का मतलब होता है बुढ़ापा और जरा का, और पहला अर्थ और दूसरा अर्थ होता है बीमारी। तो जो व्यक्ति भयभीत होगा या डरा हुआ होगा वो जल्दी बूढ़ा होता है या उसको बीमारी लग जाती है। और फिर चिंता, वो व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, जो व्यक्ति डरता है उसके साथ ये दोनों चीजें हमेशा साथ में रहती है। फिर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि डिवोटी क्यों डरते हैं। इमोशनल सर्विस में आने के बाद हम भक्ति कर रहे होते हैं तब भी हमें डर लगता है, तो फिर हम क्यों डरते हैं? क्योंकि जो हम स्पिरिचुअल मेथड को करेक्टली अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, जो स्पिरिचुअल मेथड्स, जो स्पिरिचुअल चीजें दी गई हैं, जो पैकेज प्रभुपाद ने दिया है, उसको हम एज ए चीज अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते या नहीं उतारते। अपने हिसाब से कुछ न कुछ तोल मरोड़ देते हैं या अलग व्याख्या कर देते हैं, इतना नहीं हो सकता, इतने बड़े होते हैं जी, हम नहीं कर सकते, हम तो घर में रहने वाले लोग हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो अपने हिसाब से जो है उसको मोल्ड कर लेते हैं। इसीलिए हमारे अंदर भी भय व्याप्त होता है, क्योंकि हम डिवोशनल सर्विस करने के बावजूद जो है हम माला जपते हैं, सब मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, कथा भी सुनते हैं, कथा करते भी हैं, तभी हो जाता है। वजह यही है कि हम इन स्पिरिचुअल जो चीजें हैं, स्पिरिचुअल मेथड्स है, उसको करेक्टली अप्लाई नहीं करते। दूसरा कारण है कि हमारे वाणी में, मन में और एक्शन में अंतर होता है। हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। ये एक बड़ा कारण है डिवोटी के अंदर फियर होने का। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मस्य एकम महात्मा, मचस अन्यत मनस अन्यत कर्मस अन्यत पुरात्मा। जो महात्मा होते हैं उनका वाणी, उनका मन और उनका कर्म एक ही होता है। जो दुरात्मा होता है वो मन से कुछ और सोचता है, वाणी से कुछ और बोलता है और फिर एक्शन में कुछ और दिखाता है। ये दुरात्मा के लक्षण है। तो जिसको महात्मा बनना है उसको अपने तीनों चीजों में एकता लानी पड़ेगी, वाणी में, मन में और कर्म में। जब ये एकता उपस्थित हो जाएगी तो उसके अंदर से फियरनेस जो है, फियर जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर जो तीसरा कारण है कि हम पूरी तरह से भगवान को समर्पित नहीं होते, हाफ हार्टेडली हम कुछ चीजों के प्रति समर्पित होते हैं, कुछ चीजों को ठीक से करते हैं, कुछ चीजों के लिए समर्पित होते हैं और कुछ चीजों को अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम हमारे अंदर डर व्याप्त होता है, अर्थात डिवोटी के अंदर। फिर भक्ति में आने के बावजूद भी जो नेक्स्ट कारण है कि हम अपनी इच्छा को हिसाब से काम करना चाहते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम वो इच्छाएं जो हम भौतिक जगत में परिवार में रहकर पूरा नहीं कर पाते हैं, आध्यात्मिक संघ भक्तों के संग में आकर हमें ऐसा मौका मिल जाए तो उस इच्छा की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये हम जो है हमारे अंदर डर का वातावरण बना देता है। फिर हमारे जो नेक्स्ट है, हमारे अंदर दोगला मन और कपट जो है वो भरा होता है, क्योंकि ये दोगला मन जो है वो बहुत खतरनाक है किसी डिवोटी के लिए। सिंसियरिटी का मतलब है दोगला मन से रहे और कपट से रहे। सिंसियर भगवान हो, जैसे हम कई बार सुनते हैं सिंसियर होना चाहिए, तो सिंसियर का मतलब क्या है? दोगला मन से रहे और कपट से रहे। इसी क्योंकि भगवान को ये कपट वाला जो गुण है भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो इसलिए जो है भगवान परमान के ऊपर कृपा नहीं करते और फिर जो है हमारे अंदर डर व्याप्त रहता है। भगवद्गीता में भगवान इस बात का चर्चा करते हैं, भगवान राम जो है तुलसीदास नाम से मानस की जगह पर लिखते हैं, निर्मल जन सो मोहि पावा मोही कपट छल छिद्र न भावा, कि मुझे कपटी और छिद्र देखने वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान राम ये उपदेश भरत को देते हैं, भरत को बता रहे हैं कि मुझे कपटी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, या दूसरे लोगों में जो छिद्र देखते हैं, दूसरे छिद्रा अन्वेषण करने वाले जो लोग हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये जो है हम डिवोटी डिवोशनल सर्विस में आने के बावजूद भी, भक्ति में आने के बावजूद भी जो है हमारे अंदर ये सब चीजें बनी रहती हैं, इसीलिए जो है वो डर भी बना रहता है। फिर हम ईमानदारी से जो है वो सेंस क्रिटिफिकेशन को अवॉइड नहीं कर पाते। We are not honest to avoid the sense gratification. कि हम avoid sense gratification को avoid करने में इतने ईमानदार नहीं होते। कहीं ना कहीं से किसी न किसी वजह से जो है sense gratification का केवल एक मतलब नहीं है कि किसी को सम्मान बनाना किसी से स्त्री पुरुष का वजह से। sense gratification के जो है बहुत सारे उसमें आता है और हम बहुत अच्छे sense gratification करते हैं, तो कई बार हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते कि हम sense gratification, हमें लगता है कि हमारे को सम्मान तो है नहीं किसी किसी पुरुष से, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन हम करते नहीं। सेंस ग्रेटिफिकेशन और तरह से नहीं होता। तो हम क्या है कि जाने और अनजाने में वो सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है या तो कर रहे होते हैं या फिर ईमानदारी से उसको अवॉइड नहीं कर पाते, इसीलिए हमारे अंदर जो है वो डर बना रहता है। गलत आचरण करने वाला व्यक्ति हमेशा डरता है। जो जिसका बिहेवियर ठीक नहीं है या जो प्रॉपर नहीं है एक डिवोटी के हिसाब से नहीं है, तो इस व्यक्ति के अंदर हमेशा भय व्याप्त है। हमने पेंटरूम देखा है बड़े घर में, पहले अब तो घड़ियों नहीं होता, पहले जो घड़ियों के जो पेंटरूम होता था यूं हिलता रहता था, इधर कभी इधर, तो हम भी कभी भोग और कभी त्याग के बीच में यूं ही हिलते रहते हैं। बहुत बड़े त्याग भी दिखाते हैं कई बार और करते भी हैं, त्यागी होते हैं, और परंतु फिर पता चला कि दूसरे क्षण में जो है वो भोग की भावना जो है वही प्रबल हो जाती है। मक्खी की तरह, मक्खी को देखो कि आप कभी मन पे भी बैठ जाता है, कभी मिठाई पे जाकर भी बैठ जाता है, पर मधुमक्खी जो है वो भी सबका मधुमक्खी केवल एक ही जगह बैठे उसको एक ही जगह से रस लेना है, वो नहीं जाता है। तो हमारा जो व्यवहार होता है कई बार मक्खियों की तरह होता है या पेंडुलम की तरह हम गिरते रहते हैं भोग और त्याग की वृत्ति में। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर त्याग नहीं होता, नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते, उतना सर्विस करने का प्रयोग करते हैं हम लोग, सरेंडर भी है हम सब, पर सरेंडर जो है वो उसका लेवल बहुत वो हम देखना पड़ेगा कि कितना है वो, क्योंकि हम कई बार बहुत ज्यादा हम कुछ चीजों पर सरेंडर होते हैं, कई बार हम स्पिरिचुअल चीजों के लिए जो है पूछते हैं और मटेरियल चीजों के लिए पूछते नहीं अथॉरिटी से। इसके लिए क्या पूछना है ये तुम्हारे को खुद ही करना पड़ेगा। पर हम अभी इतने सिद्ध नहीं हो गए हैं कि जो है मटेरियल चीजें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को जो है प्रभावित नहीं करेगी। तो इसीलिए हमें जब हम किसी ऑथोरिटी के पास जाते हैं तो हमें अपनी सारी बातें खुल के बतानी चाहिए, मटेरियल भी और स्पिरिचुअल भी, देन वो व्यक्ति जो है करेक्टली आपको गाइड कर सकता है। तो इसलिए हम इसमें इसकी वजह से हमारे अंदर जो है वो जड़ की भावना होती है भक्तों के अंदर। फिर इस फियर का रिजल्ट क्या होता है हमारे शरीर के ऊपर हमारे मन के ऊपर, इसी पर चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अगर हम कोई डर के अंदर फूड खाना नहीं खाता है, जिस व्यक्ति के अंदर डर होता है और डर के लिए अगर खाना नहीं खाता है तो वो खाना उसके लिए जहर का काम करता है। और किसी भक्त के लिए जो है वो डर होने का मतलब है कि व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। अगर उसके अंदर डर है इसका मतलब व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि भगवान पहले बता रहे कि सबसे पहला गुण क्या बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस है या कोई व्यक्ति भक्त है तो उसके अंदर सबसे पहला गुण क्या प्रकट होगा, निर्भीकता, अभय, अभय अभय हो जाएगा, अभय निर्भीक होगा। फिर डर के कारण जो है व्यक्ति अपना सारा का सारा जीवन जो है खराब कर देता है, वो उसका स्वाभाविक जीवन में वो जीता नहीं है, उसका पूरा जीवन जो है समाप्त हो जाता है। फिर डर की वजह से हमें अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, चिंता चिंता बाकी हम हमेशा चिंतित रहते हैं। दूसरा है कांपना, कई बार व्यक्ति डर से कांपता है, जैसे अभिनय कश्यप के केस में देखो इतना कांप जाता था कि व्यक्ति ये छोटा सा बच्चा आई मर क्यों नहीं रहा। फिर पसीना, ये सारी जो है बदलाव होते हैं, कई बार हम डर की वजह से व्यक्ति के अंदर पसीना आ जाता है, बहुत पसीना पसीना आ जाता है, बेचैन रहती है व्यक्ति के अंदर, बेचैन रहता है हमेशा, उत्तेजित रहता है माइंड जो है उसका हमेशा उत्तेजित रहेगा, मन से हमेशा उत्तेजित रहता है वो जो व्यक्ति जिसके अंदर डर है हमेशा उत्तेजित रहता है, सॉफ्ट फील करता है, हमेशा जो है एकदम सन रहता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा डर होता है। जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, जिस पर जिन विचार से वो डरता है, वो विचार उसको बार बार परेशान करते हैं, वो बार बार वो विचार उसके अंदर आता है। जैसे हम कंस के केस में देखते हैं, वो कृष्ण से डरते थे तो बार बार कृष्ण का एक स्मरण करते थे, बार बार कृष्ण उनके चिंतन में आते थे, रिपीटेशन ऑफ थॉट्स। तो ऐसे हमें भी लगता है हम किसी चीज से डरते हैं तो उस चीज का हमें बार बार रिपीटेशन होता है, हम बार बार कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। और फिर हमारी हालत जो है वो फिर एक कौड़े की तरह हो जाती है कि कौवा सबसे ज्यादा डरता है, जब वो पक्षियों में गिनाया था। पर रामचरितमानस में इसका प्रसंग आता है कि जो कौवा है बहुत डरपोक होता है, कि तुम उसमें कौवे की तरह मत डरो, बायस की तरह जो है हमेशा सबसे डरता रहता है। तो हमारे जो है इसमें डर की वजह से भक्ति के अंदर ये भावना जो है उत्पन्न हो जाती है, फिर अग्रेसिव होता है। अग्रेसिव आप देख लेते हिरण्यकश्यप के केस में, अग्रेसिव होगा छोटे से बच्चे पक्षी के लिए, क्या बोला आप देगा अगर जैसे तो शांत होना जी के माइंड में आना रखती हूँ, तीनों लोग के ऊपर मेरा राज्य है, तो फिर छोटे से बच्चे से क्यों डरना। फिर स्ट्रेसफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है व्यक्ति को, नाम बनने से शुद्धता आती है, इनसिक्योर असुरक्षा की भावना होती है व्यक्ति के अंदर, किसी भी डर से उसके अंदर असुरक्षा की भावना जाती है, उस डर की वजह से जो है वो असुरक्षित असुरक्षित महसूस करता है, वो डर की वजह से कंफ्यूज घबराया हुआ होता है। फिर कह रहे हैं अगर ये डर कॉन्स्टेंटली हो, कंटिन्यूसली हो, तो व्यक्ति के तो सिर में या पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, स्टोमेक और माइंडल जो है माइंड में पेन होना शुरू हो जाता है। फिर क्राई, व्यक्ति रोता भी है और फिर लोग अपने व्यक्ति फोकस नहीं रह पाता अपने उद्देश्यों के ऊपर, तो व्यक्ति अगर डरा हुआ है तो व्यक्ति जो है उसको क्या करना है उसके ऊपर फोकस नहीं रह पाता। तो ये सारे जो कारण है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से व्यक्ति के अंदर प्रकट होता है, अगर हम डर में डर के जीते हैं या किसी वजह से हमारे अंदर जो है वो डर बैठा हुआ है। तो फिर इसका वे आउट क्या है, वे आउट जो है कि अगर हम कृष्ण से संबंध बनाते हैं और हमारा हमें मालूम है कि कृष्ण से मेरा एक पर्सनल संबंध है या हम एक इंटीमेट रिलेशन के लिए वर्क करते हैं भगवान से, तो ना हमें कहीं किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति से कहीं कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान से अपना जो है वो संबंध को दोबारा से स्थापित करने का प्रयास करें। अपने भक्ति के जो नियम है और भक्ति के जो मेथड्स हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करने में हम ऑनेस्ट रहें कि मैं क्या ईमानदारी से जो है इन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कैमरे लगा के नहीं देखता कि आप पीछे से कौन कैसी भक्ति करते हैं, पीछे कौन देखता नहीं कोई व्यक्ति। मैं यहाँ से 400 किलोमीटर दूर हूँ या 200 किलोमीटर दूर हूँ तो मुझे भी देखने नहीं आ रहा कि मैं कैसा आचरण कर रहा हूँ, पर निश्चित रूप से भगवान तो देख ही रहे होते हैं और बाकी सारे जो जो एजेंट्स हैं भगवान के वो भी सब देख रहे होते हैं। ये अलग बात है कि भौतिक लोग या भौतिक वातावरण में हमें हम उन लोगों को हमें देख नहीं पाते जिन लोगों के बीच में हमें रहना होता है। तो ये ऑनेस्टी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो भक्ति के जो मेथड है करेक्टली, क्योंकि मेरे खुद का भी नाम और है वैसे भी कि हम भक्ति के मेथड को अगर हम करेक्टली अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारे अंदर डर नहीं होता है, फिर हमारे अंदर नीचे गिरने की जो है संभावना बहुत ज्यादा होती है कि हम इन चीजों से जो है वो गिर जाएंगे। फिर अधिक से अधिक जो है वो सरेंडर करने का प्रयास करें और भक्तों का जो है भक्तों की सेवा करें, भक्तों भगवान के को ज्यादा सरेंडर हो, भगवान को सरेंडर करने का मतलब है कि बहुत ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए और जब भी मौका मिले हमें अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। फिर अनुकूल से संकल्प का प्रतिकूल से वर्णन जो है वो इसमें समर्पण के 6 गुण बताए गए हैं। तो अनुकूल से संकल्प अगर हम करते हैं कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है हम उसको करें और जो भक्ति के प्रतिकूल है उन चीजों को छोड़ दें, तो फिर हमारे अंदर ये भावना तीसरा स्टेज आता है कि अच्छी शक्ति की विश्वासोत्ता प्रकट होगा। कोई अनुकूल से संकल्प नहीं करता अर्थात भक्ति के लिए फेवरेबल चीजों को नहीं करता, भक्ति के जो प्रतिकूल चीजें हैं उनको नहीं छोड़ता, तो निश्चित रूप से उसको कभी विश्वास नहीं होगा कि भगवान मेरी रक्षा करें। ये विश्वास उसी व्यक्ति को होता है जो ये दोनों प्रोसेस को पहले करता है, अनुकूल से संकल्प और प्रतिकूल से वर्जन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिवोटी के लिए। और बी सिंसियर, सिंसियर का मतलब मैंने आपको पहले बताया है, कपट रहित होना और दोगलापन से दूर रहना। हम जो अंदर हैं वही बाहर दिखने चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। बी ट्रूथफुल, हम अगर ट्रूथफुल रहेंगे तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने कब कहां पर और क्या बोला था, तभी हमारे अंदर डरते मैंने कब क्या बोला था उसको हम याद करेंगे। बस ट्रूथफुल हम रहेंगे अगर, तो हमें याद नहीं करना पड़ेगा मैंने क्या बोला होगा, सच्चाई बोली होगी तो हमें तो कभी किसी तरह का डर नहीं लगेगा। तो ट्रूथफुल जो है इसका सीधा संबंध है डर से। फिर जो है हम अपनी जो भौतिक कामनाएं हैं और भौतिक जो इच्छाएं हैं उसको कम से कम करने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो है ये डर को जन्म देता है। तो इस तरह से जो है ये डर जो है व्यक्ति को या एक डिवोटी को भी या एक नॉन डिवोटी को भी सबको प्रभावित करता है अगर हम सही चेतना में नहीं रहते हैं। हम हिरण्यकश्यप के केस में देखते हैं इतने व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद जो है वो सब कुछ था उनके पास सब कुछ, पर फिर भी वो जो है व्यक्ति डर रहे थे। किससे? एक छोटे से बालक से, वही 5 साल का बालक। क्योंकि इसलिए जो मेटेरियल चीजें जो है वो भौतिक चीजें, चाहे हमारे पास साधन कितने ज्यादा क्यों ना हो जाए, ये चीजें हमारे डर को कभी खत्म नहीं कर सकते। तो ये चीजें भी हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी भी प्रश्न है टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। एक आप श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हरे कृष्ण।